श्रोताओं, हमारा अगला अध्याय है जर्मनी में नाथसीवाद। आइए शुरू करते हैं। नाथसीवाद फासिज्म का अधिक नक्सली और अधिक गतिमान जर्मन संस्करण है। प्रथम महायुद्ध में जर्मन नगरों का विकास ही नहीं किया गया, केवल जर्मन मस्तिष्क को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। द्वितीय महायुद्ध ने जर्मन नगरों को तबाह कर दिया, लेकिन उसके मस्तिष्क को नया और स्वस्थ कर दिया। ल्यूडविग हैम्बर्गर का विश्लेषण जर्मन समस्या का महत्वपूर्ण पहलू उजागर करता है। नाथसीवाद के उदय में जर्मन का भ्रष्ट जनमानस सहायक सिद्ध हुआ। वाइमर गणतंत्र, अगला शीर्षक है वाइमर गणतंत्र। प्रथम महायुद्ध में जब तक जर्मनी का पल्ला भारी था, जर्मन जनता भुलावे में रही, लेकिन 1918 में ज्यो ज्यो जर्मनी हारता रहा, असंतोष बढ़ता गया। नवंबर में सम्राट विलियम द्वितीय भी भाग खड़ा हुआ और समाजवादियों के प्रभाव में शासकों के प्रति विरोध इतना बढ़ा कि सत्ता उन्हीं के नेता एबर्ट के हाथ में आ गई। 11 नवंबर को नई सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। सारे जर्मनी से राज परिवार भाग चले थे और राजनीतिक जीवन असाधारण रूप से उद्वेलित था। साम्यवादी दल ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर रूस की क्रांति की तरह जर्मनी में भी मजदूरों की सत्ता स्थापित कर मार्क्स के सपने को पूरा करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक गलतियों के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रोंजा लुक्सेमबुर्ग और स्पार्टकस नाम से विख्यात लिपनेखट गिरफ्तार कर लिए गए और जेल के रास्ते में ही उन्हें मार दिया गया। इस अनिश्चितता की स्थिति में यह तय हो गया कि जर्मनी में राजतंत्र नहीं लौटेगा। राजतंत्रवादियों की घोर विरोधी के बावजूद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और जनवरी 1919 में संसद का पहली बार चुनाव हुआ। जर्मनी के राजनीतिक दलों के नामों और गुटबंदियों को बहुत से परिवर्तन हुए और 421 सीटों में सोशल डेमोक्रेट नामक दल 163 सीटें प्राप्त की। किसी दल के बहुमत के अभाव में तीन दलों सोशल डेमोक्रेट्स, सेंस्टिस्ट और डेमोक्रेट्स ने संयुक्त रूप से वाइमर नामक नगर में पहली वैधानिक सरकार बनाई और फ्रीडरिक एबर्ट को गणतंत्र का पहला राष्ट्रपति चुना। एक नया संविधान बनाया गया जिसके अनुसार बालिग मताधिकार 7 वर्ष के लिए कार्यपालिका के शीर्ष स्थान पर राष्ट्रपति और 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। इस शिशु वाइमर गणतंत्र को वेरसाई की विनाशकारी और अपमानजनक संधि को क्रियान्वित करना था। रूढ़िवादी सत्ता वाली देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने थे और एक असंगठित शासन तंत्र द्वारा नित प्रतिदिन का शासन चलाना था। इस गणतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जर्मनी में न तो प्रजातंत्र की परंपरा थी, न ही गणतंत्र की। कोई भी दल इतना संगठित और शक्तिशाली नहीं था कि जनता और शासन दोनों को संभाल सके। देशहीन भावना से ग्रस्त था। अपमान और कुंठा का द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। देश में विभिन्न दल, विशेषकर राजतंत्र समर्थक, निरंतर सरकार की तख्ता पलट करने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं। सबसे बड़ी मार आर्थिक थी। जर्मनी के प्रमुख आय का स्रोत या तो छीन लिए गए थे या उन पर विजेताओं का अंकुश था। प्रजातंत्र के हिमायती पश्चिमी देशों ने जर्मनी में पहली प्रजातांत्रिक सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं किया। वाइमर गणतंत्र को विशेष सफलता लोकार्नो संधियों के समय मिली, जब स्ट्रेसमान के दूरदर्शी नेतृत्व के ने उपेक्षा और अपमानित जर्मन को यूरोपीय परिवार तथा राष्ट्र संघ में सम्मानित स्थान दिलवाया। प्रारंभ में युद्ध के खर्चे की क्षति पूर्ति अव्यवहारिक समस्या धीरे धीरे हल होने लगी। आर्थिक स्थिति कुछ संभल रही थी कि 1929 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इतिहास का सबसे बड़ा संकट आया और सारे पश्चिमी जगत का अर्थतंत्र लड़खड़ाने लगा। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई, कल कारखाने बंद होने लगे और मुद्रा का अवमूल्यन इतना हो गया कि उसका मूल्य उस कागज के मूल्य से भी घट गया जिस पर नोट छपते थे। शार्लमैन के साम्राज्य और अपनी परंपराओं से प्रेरित जर्मन अहम फिक्टे हेगल नीत्से जैसे विचारकों के प्रभाव में कट्टर राष्ट्रवादिता की ओर बढ़ता रहा। नेपोलियन से त्रस्त जर्मन भूमि पर प्रशा के पुनरुत्थान और बिस्मार्क के विजयों के बाद जर्मन साम्राज्य स्थापित हुआ। इस साम्राज्य ने असाधारण प्रगति की, जिससे बल और विलियम द्वितीय ने विश्व राजनीति करने के नीति में विश्वयुद्ध मोल लिया और पराजित जर्मनी को पेरिस में पंगु बना दिया था। ऐसे में वस्तु स्थिति को स्वीकार कर पाना असंभव ही था। जर्मन सेनापति ने वेरसाई की संधि को राजनीतिज्ञों का आत्मसमर्पण कहा था। पूरे जर्मनी में शायद ही कोई विभीषण रहा हो जिसने इस संधि को सहर्ष स्वीकार किया हो। इस संधि का अंत होना पूरे देश की मनोकामना थी। विलियम के पलायन के बाद वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन गणतंत्र जर्मनी की परंपरा नहीं थी। आज्ञा देने या पालन करने का अभ्यस्त जर्मनी संसदीय व्यवस्था के लिए तत्काल तैयार नहीं था। एक नवजात प्रजातंत्र पर एक कठोर संधि के क्रियान्वयन और हर्जाने चुकाने की जिम्मेदारी थी। प्रजातंत्र के हिमायती पश्चिमी देशों ने इसे सहारा देने के बजाय शोषण किया। परिणाम यह हुआ कि युद्धोत्तर जर्मनी की स्थिति नहीं आई। इसी बीच स्ट्रेसमान अकेला दूरदर्शी राजनेता हुआ, लेकिन उसे समझौतावादी समझा जाता था। देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति हिंडनबर्ग बूढ़ा सैनिक था। कुल मिलाकर जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व का अभाव, भटकाव और हताशा का वातावरण था। जर्मनी एक संपन्न देश है। एकीकरण के बाद जर्मनी भी फ्रांस और इंग्लैंड के लिए चुनौती बन गया, लेकिन वेरसाई की संधि ने जर्मनी के लोहा, कोयला और उत्पादन का एक बड़ा अंश विजेताओं को सुपुर्द कर दिया। अब उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। जर्मनी मुद्रा का अवमूल्यन होते जा रहा था और स्थिति ऐसी आ गई कि विदेशी अपनी मुद्रा के कुछ सिक्के खर्च कर सारे देश का भ्रमण कर सकता था, लेकिन जर्मनी झोलों में अपनी मुद्रा भर कर भी पेट भर भोजन नहीं कर पाता था। जहां प्राकृतिक साधन भरपूर हो, वहां जहां के लोग मेहनतकश तथा कुशल हों, वहां का अर्थतंत्र ध्वस्त होने पर क्षोभ और निराशा बढ़ेगी ही। ईएचकार के अनुसार यह विजेताओं की समझ के बाद में आई कि जर्मनी की वित्तीय स्थिति जितनी बेहतर होगी, वह अपने ऋण उतनी ही आसानी से भुगतान कर सकेगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जर्मनी के सारे उपनिवेश छीन लिए गए थे। विजेताओं के उपनिवेश पहले की तरह ही समृद्धि का आधार बने हुए थे। जर्मनी की नौसेना ध्वस्त कर दी गई और उसे वायुसेना रखने की अनुमति नहीं थी। थल सेना 1,00,000 तक सीमित थी। किसी भी तरह की सैनिक तैयारी पर अंकुश था। हजारों वर्ग मील जर्मन भूमि दूसरे देशों में दे दी गई थी। लाखों जर्मन दूसरे देशों में अल्पसंख्यक बने हुए थे। जर्मन भूमि को चीरता हुआ सपोलैंड का गलियारा एक छुरे की तरह घुसा हुआ था। जर्मन भूमि पर विदेशी सेनाएं मौजूद थी। उसे प्रारंभ में राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनाया गया। इसी तरह जर्मन एक कमजोर, महत्वहीन और अपमानित देश बना दिया गया। जर्मनी इसे कैसे और कब तक स्वीकार करता? ऐसी स्थिति में समाजवादियों का प्रभाव और सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। उनकी ताकतों में जर्मनी उद्योगपति आतंकित थे। वे हर कीमत पर इसे समाप्त करना चाहते थे। जर्मनी हताश था और जर्मन लेखक स्पेंगलर की पुस्तक पश्चिमी जगत का पतन, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जर्मनी में मूर्त हो चला था। अगला हेडिंग है हिटलर का प्रादुर्भाव। इस स्थिति को हिटलर ने चमत्कारी ढंग से बदल डाला। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के एक साधारण परिवार में हुआ था। उसे न परिवार का उचित लालन पालन मिला, न ही स्नेह। वह वियना में चित्रकला विद्यालय में प्रवेश चाहता था, लेकिन उसे नहीं मिला। उसके मित्र और सहयोगी मंत्री अल्बर्ट स्पियर ने लिखा है, प्रवेश न पाने का उसके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसे न परिवार से कुछ मिला और न समाज से। अपना पारिवारिक नाम बदलकर हिटलर रख लिया। प्रथम महायुद्ध में वह एक सैनिक की हैसियत से पुरस्कृत हो चुका था। 1920 में म्यूनिख में फेडर के साथ मिलकर उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन किया और राष्ट्रीय निर्माण का एक 25 सूत्री कार्यक्रम बनाया। उसने खुलेआम वेरसाई संधि, फ्रांस, यहूदियों, पूंजीपतियों और वाइमर गणतंत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 1923 में लुडेनडॉर्फ के साथ उसने दुस्साहसपूर्ण ढंग से सत्ता अधिकार करने का प्रयास किया। यह प्रयास सफल नहीं हुआ, वह गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उसने अपनी आत्मकथा माइन काफ लिखा, जो नाथसी पार्टी की बाइबिल बन गई। यह पुस्तक घृणा की भावना से ओतप्रोत थी और अग्नेय शब्दों में जर्मन के दुश्मनों को रेखांकित करती थी। रिहा होकर उसने अपने दल को नए सिरे से संगठन किया। आर्यों की पवित्रता का सूचक स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण कर सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित की गई। पार्टी के आतंकारी दल और रक्षक दल विरोधियों को तबाह करने अपने दल का प्रचार करने में व्यस्त थी। उद्योगी सामंत सुमन के अनुसार अपनी समृद्धि और विशेषाधिकार के प्रति कम्युनिस्ट समाजवाद, ट्रेड यूनियन और अन्य तत्वों द्वारा वास्तविक और काल्पनिक खतरे पैदा किए जाने के कारण इसकी मदद कर रहे थे। धीरे धीरे असंतुष्ट वर्ग को हिटलर के राष्ट्रवादियों समाजवादी में आशा की किरण दिखाई देने लगी। हिटलर की अद्भुत वक्तृता का जादुई असर होता था। उसके विरोधी पार्टी से हटा दिए गए और वह पार्टी में अपनी सत्ता और जर्मनी में पार्टी की सत्ता के लिए व्यस्त हो गया। पवित्र रोमन साम्राज्य और बिस्मार्क द्वारा स्थापित साम्राज्य के गौरवशाली उत्तराधिकारी साम्राज्य की स्थापना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। हिटलर मजदूरों को बहकाने में सफल नहीं हो सका, लेकिन युवा वर्ग जिसका भविष्य अनिश्चित था उसके पीछे था। उसने यहूदी विरुद्ध रुख ने शिक्षा, व्यवसाय और अन्य देशों में नई संभावनाएं जगा दी। मध्यम वर्ग साम्यवाद के व्यक्तिगत संपत्ति विरोधी सिद्धांत से घबराकर उसके पीछे चला गया। जर्मनी पार्लियामेंट में भी उसके दल का महत्व बढ़ता जा रहा था। 1930 के चुनावों में पहले के 12 सदस्यों के स्थान पर 107 प्रतिनिधि चुने गए। राजनीतिक अस्थिरता देखकर 1932 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को टालने की कोशिश की गई, परंतु हिटलर ने इसका विरोध किया। अंत में चुनाव हुआ। एक मामूली व्यक्ति हिटलर बूढ़े मार्शल हिडेनबर्ग का प्रतिद्वंदी था। फिर भी हिडेनबर्ग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दूसरे चुनाव में ही वह विजयी हुआ, परंतु हिटलर को 1,34,00,000 मत मिले। यह आशातीत असफलता थी। प्रधानमंत्री ब्रूनिंग अध्यादेशों की मदद से कब तक शासन करता, उसने इस्तीफा दे दिया। पापेन ने दक्षिणपंथी सरकार बनाई और चुनाव करवाया, जिसमें नाथसी पार्टी को 230 सीटें मिली। इतनी सीटें किसी दल को प्राप्त नहीं हुई थी। फिर भी हिटलर को मंत्रिमंडल नहीं बनाने दिया गया। संसद भंग कर दी गई। पुनः चुनाव में नाथसी पार्टी सबसे अधिक स्थान मिले। राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रारंभ हो गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को भी 100 स्थान मिले थे। कोई दूसरा रास्ता न देखकर हिडेनबर्ग ने हिटलर के समक्ष मिलीजुली सरकार बनाने का प्रस्ताव किया, जिसे हिटलर ने नामंजूर कर दिया, क्योंकि वह सहयोग के विषय के लिए आश्वस्त नहीं था। स्लाइसर को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसने बाद में अपने को असमर्थ पाकर इस्तीफा दे दिया। हिडेनबर्ग कमजोर हो चुका था। हिटलर को राष्ट्रपति निवास में आमंत्रित किया। नाथसी दल चुपचाप पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहा था। 30 जनवरी 1933 को जब हिटलर राष्ट्रपति महल से निकला तो वह चांसलर प्रधानमंत्री था। उसके लाखों समर्थकों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किए, जिसके अनुशासन और साज सज्जा से बर्लिनवासी स्तब्ध रह गए। अस्वीकार, वसूली और पुनरुद्धार के नारों के साथ नाथसी दल और हिटलर सत्तारूढ़ हो गए। जर्मनी एक भयानक विभीषिका की ओर बढ़ चला। हिटलर जैसा क्रूर, गंवार और असंस्कृत व्यक्ति दर्शन, साहित्य और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा वाले जर्मनी में कैसे सफल हो सका? प्रथम महायुद्ध के पराजय और विशेषकर वेरसाई की संधि ने जर्मन को रोगी बना दिया था। जर्मन एकीकरण के पहले ही राष्ट्रीय अहम को गुब्बारे की तरफ फुलाया जा रहा था। सुपरमैन की कल्पना सुपर नेशन से जोड़ी जा रही थी। जर्मन के सभी प्रमुख विचारक फिक्ते, हेगल, कांट, नीत्से जर्मनी को सर्वशक्तिशाली और सर्वोच्च बनाने की दिशा में तैयारी कर रहे थे। प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण ने इस क्रम को आगे ही बढ़ाया था। बिस्मार्क ने जर्मन राज्य नहीं, जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। तीव्र गति से आर्थिक प्रगति करने के बाद भी विश्व के प्रभुत्व स्थापित करने की दौड़ में जर्मनी पीछे पिछड़ गया था। विश्व राजनीति करने के दावों के साथ विलियम द्वितीय ने पूंजीवादी देशों की आर्थिक होड़ को अनिवार्य युद्ध तक पहुंचा दिया और युद्ध में जर्मनी को प्रारंभिक सफलता मिली थी। तभी पलट गया। जर्मनी परास्त और अपमानित हुआ। युद्ध के बाद का जर्मनी इतिहास में पहली बार स्वयं को असहाय महसूस कर रहा था। एक जर्मन शिक्षक स्पिंगलर ने जब डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट लिखा तो पश्चात व्यवस्था में पतन के बहाने उसे जर्मनी को ही अनिवार्य पतन का चित्रण किया था। जर्मन हताशा की यह प्रतिनिधि अभिव्यक्ति थी। ऐसे समय में जर्मनी को आशा और विश्वास की आवश्यकता थी। उसे ऐसे विचार, व्यक्ति और दल चाहिए था जो वर्तमान की अवज्ञा कर भविष्य के लिए आश्वस्त कर सके। हिटलर ने वर्तमान की वही चमत्कारी विकल्प प्रस्तुत किया। जर्मन जाति आज्ञा देने और आज्ञा का पालन करने की परंपरा का निर्वाह करना जानती थी। जर्मन में किसी स्तर पर परिवार से राज्य तक जनतांत्रिक मूल्य स्थापित नहीं हो पाए थे। 1919 के बाद प्रजातांत्रिक सरकारें स्थापित हुई तो वह अन्य परिस्थितियों के अलावा जर्मन मनोविकृति के कारण भी सफल नहीं हो पाई थी। यदि जर्मनी में जनतंत्र का विकास होता तो नाज़ीवाद वहां कभी नहीं पनप जाता। इटली में प्रजातंत्र के विकल्प के रूप में फासिज्म की सफलता जर्मनी को प्रेरणा दे रही थी। इटली में संभव हुआ क्या वह जर्मनी में भी हो सकता था? जर्मनी का आर्थिक संकट असहनीय तो था ही, साथ ही उसका समाधान भी संभव नहीं लग रहा था। बेरोजगारी सबसे निकट थी और सबसे भयावह समस्या थी। जर्मनी मार्क के अवमूल्यन ने तो अभी या कभी नहीं स्थिति पैदा कर दी थी। ऐसे समय में कोई शॉर्टकट स्वीकार्य होता। हिटलर ने इसे ही प्रस्तुत किया। अपनी आत्मकथा माइन कांफ में हिटलर ने घोर नक्सलवादी व्याख्या प्रस्तुत की थी जो मुख्य रूप से यहूदी विरोधी थी। यूरोप में ईसाई समाज के यहूदी विरोधी होने की परंपरा का आधार एक यहूदी जुड़ा का ईसा मसीहा के प्रति विश्वासघात था, लेकिन वास्तविक आधार अपनी संख्या के अनुपात में अधिक महत्वपूर्ण होना था। ये सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण तो थे ही, उद्योग और बैंकिंग पर भी उनका असाधारण प्रभुत्व था। यहूदी विरोधी होने का मतलब था उन पर दबाव डालकर अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना ताकि गैर यहूदी लोग, जर्मन लोग विश्वविद्यालयों, बाजारों, कारखानों और उनके द्वारा रिक्त किए गए स्थान प्राप्त कर लें। यहूदी विद्रोही भावना इस व्यवहारिक पक्ष को ही ध्यान में रखकर उसे राजनीतिक और वैचारिक जामा पहनाया जाता था। हिटलर के इस नारों में लोगों को भी तात्कालिक लाभ दिखाई दिया था और वे उसके पीछे आ खड़े हुए। जर्मनी की तत्काल स्थिति का विकल्प साम्यवादियों के पास था और उनका आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। इसी कारण जर्मनी की सभी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ, पूंजीपति, जमींदार, पादरी आदि आतंकित थे। वे किसी कीमत पर जर्मनी को साम्यवाद से मुक्त रखना चाहते थे। हिटलर ने जितना तीखा प्रहार यहूदियों पर किया उतनी ही कड़ी आलोचना वह साम्यवाद की भी करता था। साम्यवाद के विकल्प के रूप में ही उसने राष्ट्रीय समाजवाद का नारा दिया जो नाज़ीवाद का दूसरा नाम था। इस काम में उसे धीरे धीरे समाजवाद विरोधी ताकतों की मदद मिलती रही। उपयुक्त स्थितियों में हिटलर के व्यक्तित्व और क्षमता की भी एक भूमिका थी। वह असाधारण वक्ता था और भीड़ को मनोभाव ढंग से नचाने की क्षमता रखता था। साथ ही वह एक क्रूर संगठन करता था। वह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी शक्ति या व्यक्ति को रोता आगे बढ़ जाता था। कितनी ही बार उसने अपनी पार्टी का शुद्धिकरण किया, जिसका अर्थ उन व्यक्तियों की हत्या जिनसे वह असंतुष्ट होता। पूरी नाज़ी पार्टी एक सैनिक आधार पर संगठित थी। वही अनुशासन, वही तौर तरीके, तमाशों और कार्निवाल की प्रेमी जनता हिटलर की सभाओं और प्रदर्शनों से अत्यंत प्रभावित होती, क्योंकि सब कुछ इतना भव्य और आडंबरपूर्ण और भड़कीला होता कि वह हिटलर की शक्ति और योग्यता का प्रमाण बन जाता था। फिर भी जैसा कि गुंथर ने लिखा था, तनाशाहों में हिटलर सबसे कम संभ्रांत और सभ्य था। उसकी सफलता का रहस्य अन्य किसी विकल्प का अभाव था। हमारा अगला हेडिंग है नाथसी जर्मनी। हिटलर जिसे एकमात्र नेता कहा जाने लगा था, हिडेनबर्ग के मरने पर भी राष्ट्रपति भी बन गया। उसने चुनाव प्रणाली को इस तरह बदला कि केवल नाजी ही चुने जा सकते थे। शासन में उन्हें स्थान मिलने लगा। राइखस्टाग की इमारत में उसने खुद आग लगवा दी और इसका कम्युनिस्टों पर आरोप लगाकर उनका राजनीतिक जीवन ही समाप्त कर दिया। हिटलर के दमन का दूसरा शिकार यहूदी हुए। वही शुरू से यहूदियों से घृणा करता था। यही हाल के अधिकांश मध्यमवर्गीय यूरोपीय लोगों का था, जो संख्या में यहूदियों के अनुपात में भारी सफलता के कारण उनसे द्वेष करते थे। वे आपस में इस तरह रहा करते कि अपने देश के जनजीवन में पूरी तरह सम्मिलित होकर अपने को अलग रखे हुए थे। वे कंजूस और निर्मम समझे जाते थे। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र साइलाक, जो कर्ज वसूलने के बदले कर्जदार का मांस मांग बैठता था, यहूदियों का प्रतिनिधि चरित्र समझा जाता। यही यहूदी विरोधी भावनाएं सदियों से मौजूद रहीं और उनका यूरोप भर में दमन होता रहा, लेकिन हिटलर ने तो इसे राष्ट्रीय नीति ही बना डाला। पहले विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से उन्हें निष्कासित किया गया। उनका व्यवसाय के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया गया। उनकी नागरिकता छीन ली गई। उनके विरुद्ध दंगे करवा कर उन्हें आतंकित कर दिया गया। यहूदी भारी संख्या में जर्मनी छोड़कर भागने लगे। उन्हीं में विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी था। उन्हें गिरफ्तार किए जाने लगा और उनकी हत्या की जाने लगी। इसी दौरान हिटलर के शासनकाल में 70 लाख से अधिक यहूदी बच्चे बूढ़े तक गैस की भट्टियों में झोंक दिए गए। यहूदी की यंत्रणा के कितने ही दस्तावेज सुरक्षित हैं, लेकिन हॉलैंड में एक परिवार की 12 वर्षीय लड़की आन फ्रांक की डायरी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इतना अमानवीय कृत्य इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब राष्ट्रवादिता का ज्वार पूंजीवाद के कीटाणुओं के कारण फैलता है तो पूरे देश में सनिपात हो जाता है और बहुत से अनर्थ होते हैं। नाथसी कार्यक्रम ऊपर से सत्ता नीचे से विश्वास पर आधारित था। पूरा अर्थतंत्र युद्ध स्तर पर चल रहा था। यहूदियों से स्पर्धा समाप्त हो जाने और क्रूप्स और थाइनस जैसे उद्योगपति परिवारों ने नाथसियों का खूब साथ देकर खूब लाभ उठाया। युद्ध संबंधी उद्योग ने बहुतों को रोजगार दिया। नियंत्रित अर्थव्यवस्था के आयात निर्यात इस तरह नियोजित किया गया कि कुछ ही दिनों में आर्थिक संकट दूर होता प्रतीत हुआ। प्रथम महायुद्ध जर्मनी की भूमि पर नहीं लड़ा गया, इसलिए वहां भौतिक विनाश नहीं हुआ। लैंगसम के अनुसार 3C ने जर्मनी की कायाकल्प कर दिया। कोयला था ही। रासायनिक शास्त्रियों ने पेट्रोल को छोड़कर वे चीजें बना ली जो जर्मनी में उपलब्ध नहीं थी, और चुनौती स्वीकार करना तो जर्मनी का स्वभाव ही था। हिटलर के शासन के पहले 3 वर्षों में निर्यात आयात 35 करोड़ मार्क बढ़ गया। गोरिंग के नेतृत्व में एक 4 वर्षीय योजना बनी और जर्मनी को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक नगर बन गई, लेकिन यह सब उथले स्तर पर हुआ। विजयोन्मुखी सेना को तो संभाल सकता था, लेकिन पराजय झेलने उसके लिए असंभव था, क्योंकि उसकी नींव कृषि उद्योग और व्यवसाय की व्यापक और नैसर्गिक प्रगति पर नहीं, बल्कि आक्रामकता और उग्र नक्सलवाद अधिनायक की आवश्यकताओं पर स्थापित थी। शिक्षा, धर्म और संस्कृति पर भी नाथसी का आवरण चढ़ा दिया गया। हर संस्था का उपयोग समाज को नाथसी ढंग से ढालने के लिए किया जाने लगा। कुछ नई संस्थाएं इस उद्देश्य से बनाई गई कि हर उम्र के लिए अलग संस्था हो जो नाथसी सिद्धांतों के सहारे जर्मन जनता के शासक जाति बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। इतिहास, दर्शन, कला सबको उग्र राष्ट्रवादी रंग दिया जा रहा था। हिटलर के 12 वर्षीय साम्राज्य में जर्मन साहित्य और कला को जो विकृत रूप प्रस्तुत हुआ, उसे आज जर्मन जनता की प्रतिष्ठा धूल धूसरित होती है। पर राष्ट्रनीति। अगला हेडिंग है पर राष्ट्रनीति। विदेशों से संबंध के मामले में हिटलर ने शुरू में बड़ी सावधानी बरती। सत्ता पर अधिकार होते ही उसने जर्मनी को राष्ट्रसंघ, निशस्त्रीकरण सम्मेलन और श्रम संगठनों से अलग कर लिया। उसने घोषणा कर दी कि जर्मनी किसी देश से निम्न स्तर स्वीकार नहीं कर सकता। उसने तत्काल जर्मनी का शस्त्रीकरण शुरू कर दिया। पश्चिम में सामना करने के लिए पूरब में पोलैंड से 10 वर्षों के लिए अनाक्रमण संधि कर ली। पहले उसने राइन नदी से विजित देशों की सेना हटाई, फिर ऑस्ट्रिया को हड़पने की योजना शुरू कर दी। मुसोलिनी के विरोध और नाज़ी प्रभाव की कमी से फिलहाल यह योजना पूरी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे डाजिंग और मेला क्षेत्र पर नाज़ी पार्टियों का पूरी तरह नियंत्रण हो गया। प्रारंभिक शंकाओं के हटने के बाद हिटलर और मुसोलिनी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह निकट आ गए। अब हिटलर ने ऑस्ट्रिया में नाज़ी प्रभाव प्रचार बढ़ाया। उसने प्रधानमंत्री डाल्फस को त्यागपत्र देने पर मजबूर किया और नाज़ी दल को सत्तारूढ़ किया। अंत में ऑस्ट्रिया जर्मनी में विलय हो गया। एक तरफ उसने जर्मनों को संतुष्ट हो जाने की बात की, दूसरी ओर चेकोस्लोवाकिया में जर्मन बहुल प्रांत सुडेटेनलैंड में नाज़ी गतिविधियां बढ़ा दी। वहां चेक जाति की प्रमुखता पर पक्षपात का आरोप लगाकर उसने सुडेटेनलैंड को हड़पने की तैयारी पूरी कर ली। स्थिति बिगड़ते देख ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने हस्तक्षेप किया, लेकिन म्यूनिख में इंग्लैंड और फ्रांस ने सुडेटेनलैंड हिटलर के सुपुर्द कर दिया। किसी भी कीमत पर संतुष्ट करने की नीति बहुत घातक सिद्ध हुई। कुछ ही दिन बाद हिटलर संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया को हड़प गया। मध्य यूरोप में उसका लक्ष्य पूरा हो चला था। अब पूरब में विस्तार होना था। इस विस्तार में रूस पर आक्रमण भी शामिल था, लेकिन फिलहाल वह पश्चिम में सामना करना चाहता था। इसलिए पश्चिम से निराश होकर अब रूस ने जर्मनी की सुरक्षा समझौता करना चाहा तो हिटलर तैयार हो गया और एक संधि हो गई। जब हिटलर ने अपने नुस्खों के सहारे पोलैंड पर भी आक्रमण किया तो अंत में फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इस महायुद्ध में हिटलर का अर्थतंत्र लड़खड़ाया और प्रारंभ की आशातीत सफलता के बाद मित्र राष्ट्रों की शक्ति के सामने जर्मनी पराजित होने लगा। 1945 में जब विजयी सेनाएं बर्लिन पहुंची, तब तक अपने बंकर में हिटलर आत्महत्या कर चुका था। हिटलर का मूल्यांकन। हिटलर और उसका तंत्र निसंसता के निकृष्टतम उदाहरण है। आज जर्मनी में उनका कोई स्मृति नहीं, परंतु एक पीढ़ी पहले ही संपूर्ण जर्मनी के पीछे मानो पागल था। लेकिन तब भी फ्रिडरिख के अनुसार विरोध का स्वर एकदम बंद नहीं किया जा सकता था। अल्बर्ट स्पीयर के अनुसार उसके सहयोगी भी कभी कभी विरोध करते थे, लेकिन सेना और जासूस पुलिस की मदद से हिटलर अपने ढंग से योजनाएं क्रियान्वित करता। ग्लोबिस का विश्वास था झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वह सच लगने लगे। इसके प्रचार तंत्र के सहारे हिटलर ने अपनी असफलताओं और ऐतिहासिक भूमिका को इस तरह प्रचारित कराया कि जर्मन लोग अपनी जाति की सर्वोच्चता के विषय में आश्वस्त हो गए। इतिहासकार अनिल बुलैका ने सच ही लिखा है, हिटलर का एकमात्र कार्यक्रम था सत्ता। पहले जर्मनी में अपनी सत्ता, फिर जर्मनी सत्ता का यूरोप में विस्तार, शेष तो बस सजावट थी। हिटलर मानसिक रोगी था, उसे एक रोगी समाज ही सत्ता दे सकता था। जर्मन आदर्शवाद और राष्ट्रवाद विकृत होकर नक्सलवाद बन चुका था। औद्योगिक और औपनिवेशिक दौड़ में पिछड़ जाने पर विलियम ने विश्व राजनीति का जो दौर शुरू किया था उसे पूरा करने का काम हिटलर ने किया। वह व्यक्ति ही नहीं, एक प्रवृत्ति भी था। इतिहासकार बर्न्स के अनुसार नाज़ीवाद फासिज्म से अधिक उतावला और कट्टर था, न केवल अपने मताग्रह और कर्मकांडों में बल्कि अपनी भयानक असहिष्णुता और विस्तार के उत्साह में भी। वह वाद और एक धर्म की तरह था। हिटलर एक नए धर्म का पोप तो बन बैठा, लेकिन वह उसका तंत्र इतिहास के सहज विकास के मार्ग में अवरोध थे। यह पूंजीवादी विस्तार का अंतर्विरोध ही था जिसने हिटलर जैसे विनाशकारी व्यक्ति पैदा किया था। नाज़ीवाद और हिटलर के प्रादुर्भाव की जिम्मेदारी के पश्चात सभ्यता कभी नहीं बच सकती। एक दो व्यक्तियां या व्यक्तियां या गलतियों को हिटलर के चरित्र को रेखांकित करने मात्र से इतिहास की सही समझ नहीं बन सकेगी। हिटलर और नाथसीवाद के बीच आधुनिक यूरोप के आर्थिक राजनीति के विकास में विद्यमान थे। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।